एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी मेजबान और हमेशा की तरह बहुत उत्सुक हूं जानने के लिए कि आज विचारों के इस पिटारे में क्या है।
और मैं हूं आपका साथी विश्लेषक। कोशिश करूंगा कि इन विचारों को थोड़ा खोल सकूं, उनके मतलब को समझने में मदद कर सकूं।
तो आज हम किसकी दुनिया में गोता लगा रहे हैं?
आज हम बात करेंगे अमेरिकी दार्शनिक और फिल्म सिद्धांतकार नोल कैरल के काम की। खास तौर पर उनकी एक किताब है सिनेमा, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, और उनके कुछ और बड़े विचारों पर भी नजर डालेंगे।
नोल कैरल, अच्छा, मैंने सुना है इन्होंने फिल्म देखने और समझने का नजरिया काफी बदला है, क्या ये सच है?
हाँ हाँ बिल्कुल, कह सकते हैं कि कैरल ने फिल्म थ्योरी की दुनिया में एक ताजगी लाई। देखिए, हम सब फिल्में देखते हैं, है ना, पसंद करते हैं, कभी कभी नापसंद भी करते हैं।
हाँ बिल्कुल,
पर कैरल हमें सिखाते हैं कि सिर्फ भावनाओं में बहने के बजाय कैसे फिल्म के पीछे की कारीगरी, उसकी बनावट और हमारे दिमाग पर उसका असर, उसे समझें।
अच्छा,
और ये समझ जो है वो वाकई हमारे फिल्म देखने के अनुभव को गहरा बना सकती है।
ये तो सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहा है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि वाह क्या सीन था, बल्कि ये सोचना कि वो सीन वाह क्यों लगा, है ना,
बिल्कुल सही।
उसके पीछे की तकनीक, उसका लॉजिक। तो चलिए पहले इन साहब के बारे में थोड़ा और जानते हैं। कौन है ये नोल कैरल?
नोल करल, देखिए नाम शायद उतना आम ना हो, लेकिन समकालीन सौंदर्य शास्त्र और कला के दर्शन के क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ा नाम है।
अच्छा,
और सबसे दिलचस्प बात पता गया है,
हाँ,
उनके पास सिनेमा स्टडीज और फिलॉसफी दोनों में पीएचडी है।
अरे वाह, ये तो बड़ा ही अनोखा कॉम्बिनेशन है, फिलॉसफी और सिनेमा।
बिल्कुल, और मुझे लगता है यही चीज उन्हें दूसरों से अलग करती है। वो फिल्मों के विश्लेषण में एक दार्शनिक गहराई, एक सटीकता लाते हैं। कैरल जो है वो संज्ञानात्मक फिल्म सिद्धांत, कॉग्निटिविस्ट फिल्म थ्योरी के सबसे मुखर, सबसे अहम आवाजों में से एक माने जाते हैं।
संज्ञानात्मक फिल्म सिद्धांत,
ये क्या है, थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे?
हाँ कोशिश करता हूँ। देखिए 1980 के दशक में ना फिल्म थ्योरी में बड़ी बड़ी जटिल बातें होती थीं, जैसे मनोविश्लेषण, उत्तर संरचनावाद। कैरल इन्हें मजाक में ग्रैंड थ्योरी कहते थे।
ग्रैंड थ्योरी,
हल्की हंसी।
हाँ। तो कैरल और उनके जैसे कुछ और विचारकों ने कहा, अरे भाई रुको, क्या हम फिल्मों को समझने के लिए इतनी भारी भरकम भाषा और सिद्धांतों के बिना काम नहीं चला सकते?
अच्छा, तो वो एक तरह से सादगी की वकालत कर रहे थे कि भाई फिल्म समझना इतना मुश्किल क्यों बनाना है।
सही पकड़ा। उनका मानना था कि फिल्म विश्लेषण के लिए जटिल शब्दजाल से भरी भाषा की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि फिल्में असल में बनती कैसे हैं और हमारा दिमाग, हमारा मन जानकारी को प्रोसेस कैसे करता है। वो बिल्कुल बुनियादी सवाल पूछते हैं और फिर धीरे धीरे कदम दर कदम तर्क बनाते हैं, जैसे कोई जासूस सुराग जोड़ रहा हो।
मतलब उनका मकसद था कि फिल्म विश्लेषण सिर्फ कुछ विद्वानों तक ही सीमित ना रहे, आम दर्शक भी समझ सके।
हाँ बिल्कुल, उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए सुलभ बनाना।
तो उनकी किताब सिनेमा अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, क्या वो इसी सोच का नतीजा है? उसका क्या मकसद?
हाँ बिल्कुल, ये किताब एक तरह से आप कह सकती हैं फिल्म विश्लेषण की दुनिया में पहला कदम रखने वालों के लिए एक गाइड जैसी है। चाहे कोई छात्र हो या कोई फिल्म समीक्षक बनना चाहता हो या बस कोई फिल्मों का शौकीन हो जिसे थोड़ी और गहराई चाहिए, ये किताब उन्हें ये जो चलती फिरती तस्वीरें हैं उनके बारे में सोचने और बात करने के लिए एक साफ और मजबूत वैचारिक टूल किट, औजारों का एक बक्सा देती है।
टूल किट, अच्छा शब्द है। तो इस टूल किट में सबसे जरूरी औजार कौन सा है? मतलब किताब का सबसे मुख्य विचार क्या है?
सबसे पहला और सबसे बुनियादी विचार है सिनेमा की परिभाषा। कैरल कहते हैं सिनेमा को किसी खास तकनीक से बांधना ठीक नहीं, जैसे पहले सिर्फ सेल्यूलाइट फिल्म होती थी।
हाँ
वो कहते हैं सिनेमा चलती छवियों की कला है, द आर्ट ऑफ द मूविंग इमेज,
बस।
चलती छवियों की कला।
और ये परिभाषा देखिए आज के डिजिटल युग के लिए कितनी सही बैठती है। हम फोन पर, टीवी पर, आईमैक्स पर, हर जगह चलती छवियां ही तो देख रहे हैं।
हाँ ये बात तो है, माध्यम चाहे जो हो जरूरी है वो चलता हुआ दिखना, वो गति का भ्रम।
बिल्कुल, वो गति का भ्रम कैसे पैदा किया जाता है और उसे कैसे नियंत्रित किया जाता है, यही असल चीज है।
और कैरल का ये भी कहना था कि फिल्म सिद्धांत कोई बहुत रहस्यमय या डरावनी चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ वो एक टुकड़ों में दृष्टिकोण की बात करते हैं, मतलब व्यवहारिक नजरिया।
बड़ी बड़ी थियरीज बनाने के बजाय वो कहते हैं कि भाई खास सवालों पर ध्यान दो और उनके जवाब सबूतों और तर्कों के आधार पर ढूंढो।
उनका मानना है कि सिनेमा के साथ हमारा जो रिश्ता है वो एक सक्रिय तर्कसंगत प्रक्रिया है।
एक्टिव रैशनल प्रोसेस।
ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, आम भाषा में क्या मतलब हुआ इसका?
इसका मतलब है कि जब हम फिल्म देख रहे होते हैं तो हम सिर्फ भावनाओं में बह नहीं रहे होते, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
कैसे?
हम कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, किरदारों के इरादे क्या हैं ये समझने की कोशिश करते हैं, घटनाओं को आपस में जोड़ते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम असल जिंदगी में दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं।
अच्छा,
मतलब फिल्म की बनावट, कहानी कैसे कही जा रही है, स्टाइल कैसा है और दर्शक के सोचने का तरीका, इनके बीच एक सीधा रिश्ता है।
हाँ।
कैरल इसी रिश्ते पर, इसी कार्यात्मक संबंध पर जोर देते हैं।
चलिए, ये तो एक अच्छा आधार बन गया। अब इन विचारों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। पहला बड़ा सवाल था सिनेमा क्या है, आपने कहा चलती छवियों की कला, पर ये फोटोग्राफी या थिएटर से अलग कैसे? फोटोग्राफी में भी छवि होती है, थिएटर में भी हरकत होती है।
हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, फोटोग्राफी में छवि स्थिर होती है, रुकी रोई। थिएटर लाइव होता है, हमारे सामने घट रहा होता है और दर्शक के तौर पर हम आजाद होते हैं कि मंच पर कहाँ देखें, कभी इस कोने में कभी उस कोने में।
हाँ, ये बात तो है।
लेकिन सिनेमा में क्या होता है, निर्देशक फ्रेमिंग के जरिए, मतलब स्क्रीन पर क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा,
कैमरा मूवमेंट के जरिए, फोकस के जरिए, एडिटिंग के जरिए, वो दर्शक का ध्यान निर्देशित करता है।
अच्छा, मतलब निर्देशक तय करता है कि हम क्या देखें और कब देखें।
काफी हद तक हमारी नजर कहाँ जाएगी ये वो नियंत्रित करता है, और यही सिनेमा की कहानी कहने की असली ताकत है। फ्रेम के अंदर क्या है वही महत्वपूर्ण है।
हाँ, ये अनुभव तो हम सबने किया है, थिएटर में कभी ध्यान भटक जाता है, लेकिन फिल्म में कैमरा जहाँ ले जाता है हमारी नजर वहीं टिक जाती है।
कैरल एक और दिलचस्प बात कहते हैं, शायद स्रोत दो से है ये, कि सिनेमा की कोई एक पत्थर की लकीर वाली परिभाषा बनाना मुश्किल है।
अच्छा, तो फिर क्या है?
वो इसे पारिवारिक समानताओं यानी फैमिली रिजेम्बलेंसेस के एक समूह की तरह देखने का सुझाव देते हैं।
पारिवारिक समानताएं मतलब?
मतलब जैसे एक परिवार में सदस्यों के चेहरे मोहरे कुछ कुछ मिलते हैं, लेकिन कोई एक नाक या आंख सब में एक जैसी नहीं होती।
हाँ,
वैसे ये सिनेमा कहलाने वाली चीजों में कई विशेषताएं हो सकती हैं, कहानी कहना, चलती तस्वीरें, खास तरह की तकनीकें, ध्वनि, लेकिन जरूरी नहीं कि हर फिल्म में ये सारी चीजें हों या कोई एक चीज सब में हो।
ये तो काफी लचीला नजरिया है। तो ठीक है, सिनेमा ध्यान को निर्देशित करने वाली चलती छवियों की कला है जिसमें कई तरह की पारिवारिक समानताएं हो सकती हैं। अब आते हैं कहानी पर। ज्यादातर फिल्में तो हमें कहानी ही सुनाती हैं। कैरल कहानी कहने के बारे में क्या कहते हैं?
कैरल कहते हैं कि जो लोकप्रिय सिनेमा है, मतलब जो फिल्में हम ज्यादातर देखते हैं, उनकी कहानी हमें खास तरीके से बांधती है। वो उसे कहते हैं एरोटिक तरीका।
एरोटिक? ये शब्द तो मैंने पहले नहीं सुना, क्या मतलब है इसका?
सुनने में थोड़ा अकादमिक लगता है, पर मतलब बहुत सीधा सा है। कहानी सवालों और जवाबों के इर्द गिर्द बुनी जाती है।
सवालों और जवाबों, जैसे कोई जासूसी कहानी या पहेली?
हाँ, कुछ कुछ वैसे ही समझ लीजिए। फिल्म क्या करती है, शुरू में एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है, जैसे क्या हीरो अपने मकसद में कामयाब होगा या असली कातिल कौन है।
हाँ,
फिर पूरी फिल्म के दौरान वो छोटे छोटे और सवाल उठाती है, उनके जवाब देती जाती है, और जो सबसे बड़ा सवाल है उसका जवाब उसको आखिर तक टाल कर रखती है।
अच्छा, ताकि हमारी दिलचस्पी बनी रहे।
बिल्कुल, इसी से रहस्य बना रहता है, दर्शक की रुचि बनी रहती है, हम जवाब जानने के लिए बंधे रहते हैं।
अरे हाँ, जैसे वो पुरानी फिल्म थी द फ्यूजिटिव, हैरिसन फोर्ड वाली।
हाँ हाँ, क्लासिक।
शुरू से ही सवाल, पत्नी को किसने मारा, क्या डॉक्टर किम्बल बेगुनाह साबित हो पाएगा, क्या वो पुलिस ऑफिसर टॉमी ली जोन्स उसे पकड़ लेगा।
एकदम सही उदाहरण, पूरी फिल्म इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की प्रक्रिया है।
या फिर हिचकॉक की फिल्म में?
हाँ, अल्फ्रेड हिचकॉक तो इसके उस्ताद थे। वो सस्पेंस कैसे बनाते थे, वो हमें यानी दर्शक को कुछ ऐसा दिखा देते थे जो शायद फिल्म के किरदार को नहीं पता होता।
हाँ, या फिर किरदार से कोई जरूरी जानकारी छुपा लेते थे।
बिल्कुल, जानकारी का ये जो खेल है, कब क्या बताना है कब क्या छुपाना है, इसी से वो हमारी नब्ज पकड़े रहते थे।
तो कहानी सिर्फ घटनाओं का एक क्रम नहीं है, बल्कि ये दर्शक की जिज्ञासा को जगाने और उसे मैनेज करने की कला है।
सही कहा, ये एक बौद्धिक प्रक्रिया है।
आजकल जो वेब सीरीज का इतना चलन है कि लोग एक के बाद एक एपिसोड देखते चले जाते हैं, बिंज वॉचिंग जिसे कहते हैं।
हाँ हाँ,
कहीं ये भी इसी एरोटिक मॉडल का कमाल तो नहीं? हर एपिसोड एक नए सवाल पर खत्म होता है और हम अगला देखने पर मजबूर हो जाते हैं।
हल्की हंसी। बहुत संभव है, बिल्कुल हो सकता है। लगता है आजकल के जो स्क्रीन राइटर्स हैं उन्होंने कैरल को अच्छे से पढ़ा है।
हाँ, ये मॉडल हमारी जानने की इच्छा को लगातार कुरेदता रहता है।
सही बात।
तो कहानी हमें सवालों से बांधती है, लेकिन सिर्फ सवाल पूछना काफी नहीं होता। फिल्म दिखती कैसी है ये भी तो बहुत मायने रखता है। यहीं पर शायद सिनेमाई स्टाइल या शैली की बात आती है।
एकदम सही जगह पर आई आप। कैरल का यहाँ एक मूल मंत्र है, रूप कार्य का अनुसरण करता है।
फॉर्म फॉलोस फंक्शन।
रूप कार्य का अनुसरण करता है मतलब
ये कि फिल्म का स्टाइल, कैमरा कैसे चल रहा है, सीन कैसे कट हो रहे हैं, रोशनी कैसी है, रंग कैसे हैं, ये सब सिर्फ सजावट के लिए नहीं है।
अच्छा।
हर चीज का एक मकसद होता है, और वो मकसद क्या है? कहानी को बेहतर तरीके से कहना और दर्शक के अनुभव को आकार देना। स्टाइल कहानी की सेवा करता है।
तो ये रूप या स्टाइल बनता कैसे है? इसकी मुख्य तकनीकें क्या है?
कैरल कई तकनीकों की बात करते हैं, जैसे मिजन सीन, यानी कैमरे के सामने जो कुछ भी है, सेटिंग, प्रॉप्स, लाइटिंग, कॉस्ट्यूम, एक्टर्स का अभिनय, ये सब मिलकर माहौल बनाते हैं, किरदारों के बारे में बताते हैं। फिर है सिनेमेटोग्राफी, यानी कैमरे की कला। शॉट कितना बड़ा है, क्लोजअप है या लॉन्ग शॉट, कैमरा किस एंगल पर है, नीचे से देखने पर शक्ति दिखती है, कैमरा हिल रहा है या स्थिर है, पैन, टिल्ट, ट्रैकिंग शॉट। और एडिटिंग भी तो बहुत जरूरी है।
बिल्कुल। संपादन यानी अलग अलग शॉट्स को कैसे जोड़ा जाता है। ज्यादातर हॉलीवुड फिल्मों में हम अदृश्य निरंतरता संपादन देखते हैं। कोशिश होती है कि कट महसूस ही ना हो, कहानी एकदम पानी की तरह बहती लगे।
हाँ, पता ही नहीं चलता कब शॉट बदल गया।
लेकिन दूसरी तरफ कुछ निर्देशक हैं, जैसे रूस के आइजनस्टीन थे, वो मॉन्टाज का इस्तेमाल करते थे।
मॉन्टाज?
हाँ, मतलब अलग अलग शायद असंबद्ध दिखने वाले शॉट्स को तेजी से एक के बाद एक दिखाना, ताकि उनके टकराने से एक नया विचार या एक तीव्र भावना पैदा हो। सोचिए, एक भूखे रोते हुए बच्चे का शॉट और तुरंत उसके बाद एक अमीर आदमी की शानदार दावत का शॉट।
ओहो हाँ, ये तो सीधा असर करेगा, एक टिप्पणी बन जाएगी अपने आप में।
बिल्कुल। या फिर संवाद के दृश्यों में शॉट रिवर्स शॉट पैटर्न का इस्तेमाल। एक किरदार बोल रहा है, कैमरा उस पर है, फिर दूसरा बोल रहा है, कैमरा उस पर चला गया।
हाँ, ये तो बहुत आम है।
कैरल एक पुरानी कॉमेडी फिल्म बस्टर कीटन की आर हॉस्पिटैलिटी का उदाहरण भी देते हैं।
अच्छा, क्या है उसमें?
वो बताते हैं कि कैसे कीटन फ्रेमिंग और एक्शन की स्टेजिंग इस तरह करते थे कि दर्शक का ध्यान ठीक उस जगह जाए जहां मजाक गैग होने वाला है या हो रहा है। बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन।
कमाल है। मतलब स्टाइल का हर छोटा बड़ा हिस्सा कहानी कहने में या दर्शक की समझ और भावना को दिशा देने में मदद करता है, कुछ भी फालतू नहीं।
कैरल के हिसाब से तो यही है, फॉर्म फॉलोस फंक्शन, रूप कार्य का अनुसरण करता है।
ये तो बहुत दिलचस्प है। तो हमने कहानी समझी, स्टाइल समझा, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये सब मिलकर हम पर, दर्शक पर असर कैसे करते हैं? हम किसी सीन को देखकर डर क्यों जाते हैं, या हंसते क्यों हैं, या कभी कभी रोने क्यों लगते हैं? कैरल भावनाओं के बारे में क्या कहते हैं?
देखिए, यहीं पर कैरल का जो संज्ञानात्मक नजरिया है वो सबसे ज्यादा सामने आता है। वो कहते हैं कि फिल्मों से जो भावनाएं पैदा होती हैं वो कोई जादुई या रहस्यमयी चीज नहीं है, वो असल में हमारी तर्कसंगत प्रतिक्रियाएं हैं।
तर्कसंगत प्रतिक्रियाएं? पर भावनाएं तो अक्सर तर्कहीन लगती हैं। जब हम गुस्सा होते हैं या डरते हैं, तब कहाँ तर्क से सोचते हैं?
हाँ, ये सवाल बहुत वाजिब है। यहाँ तर्कसंगत का मतलब ये नहीं है कि हम ठंडे दिमाग से हिसाब लगा रहे हैं, मतलब ये है कि भावनाएं अपने आप हवा में पैदा नहीं होती, उनके पीछे एक वजह होती है, एक तर्क होता है जो फिल्म हमें देती है।
अच्छा, कैसे?
निर्देशक क्या करता है, वो कहानी और स्टाइल का इस्तेमाल करके एक स्थिति को हमारे सामने इस तरह से रखता है। कैरल इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, मानदंड केंद्रित करना,
क्राइटेरियली प्री फोकस्ड। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है।
आसान भाषा में कहें तो निर्देशक सीन की खास बातों पर स्पॉटलाइट डालता है। वो हमें दिखाता है कि क्या महत्वपूर्ण है, किस पर ध्यान देना है, और वो स्थिति को इतना साफ बना देता है कि एक खास तरह की भावनात्मक प्रतिक्रिया हमें सबसे स्वाभाविक, सबसे समझने योग्य, सबसे उचित लगने लगती है।
अच्छा, जैसे मान लीजिए फिल्म हमें दिखाती है कि कोई किरदार बहुत नेक है, बहुत भला इंसान है, और फिर उसके साथ कुछ बहुत बुरा होता है, कोई अन्याय होता है।
हाँ,
तो हमें उसके लिए हमदर्दी महसूस होती है, सहानुभूति होती है। तो क्या ये हमारी सामान्य नैतिक समझ के हिसाब से एक उचित या तर्कसंगत प्रतिक्रिया हुई?
बिल्कुल, एकदम सही समझा आपने।
निर्देशक ने हमें वो सारे मानदंड दे दिए, किरदार अच्छा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, जिससे सहानुभूति की भावना सबसे तर्कसंगत प्रतिक्रिया बन जाती है उस स्थिति में। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दर्शक फिल्म का कोई निष्क्रिय शिकार नहीं है जो बस भावनाओं के थपेड़े खाता रहे। दर्शक एक सक्रिय बुद्धिमान भागीदार है, एक्टिव इंटेलिजेंट पार्टिसिपेंट है, जो फिल्म को समझने के लिए अपनी तर्क क्षमता और दुनिया की अपनी समझ का इस्तेमाल कर रहा है।
अरे वाह, ये तो वाकई फिल्म देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब ये सब कोई जादू नहीं है बल्कि एक बहुत ही कुशल कारीगरी है। निर्देशक हमारी समझदारी का इस्तेमाल करके हमारी भावनाएं जगा रहा है।
हाँ, कैरल का मुख्य तर्क यही है। ये एक तरह से फिल्म निर्माण के जादू को डीमिस्टिफाई करता है, उसे खोलकर दिखाता है।
और विचारधारा के बारे में क्या? क्या फिल्में हमें कुछ खास सोचने पर मजबूर करती हैं?
कैरल मानते हैं कि हाँ, फिल्मों में सामाजिक या राजनीतिक मूल्य हो सकते हैं, वो किसी खास विचारधारा को बढ़ावा दे सकती हैं, लेकिन वो जोर देते हैं कि इसका विश्लेषण फिल्म में मौजूद सबूतों के आधार पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपनी पहले से बनी बनाई राजनीतिक सोच को फिल्म पर थोप दें। हमें देखना चाहिए कि फिल्म खुद क्या कह रही है।
अच्छा, मतलब विश्लेषण वस्तुनिष्ठ होना चाहिए।
हाँ, यथासंभव।
और क्या ये सारे विचार सिर्फ फिक्शन फिल्मों पर ही लागू होते हैं, जैसे कहानी वाली फिल्में? डॉक्यूमेंट्री या एक्सपेरिमेंटल फिल्मों के बारे में क्या?
नहीं, कैरल का जो ढांचा है वो काफी लचीला है, उसे दूसरी तरह की फिल्मों पर भी लागू किया जा सकता है। जैसे डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं जो असल दुनिया के बारे में कुछ दावा करती हैं, तो कैरल का नज़रिया हमें ये देखने में मदद करता है कि फिल्म क्या दावे कर रही है, उसके लिए क्या सबूत दे रही है और उसका तर्क कितना मजबूत है। और जो अवंतगार्डे या एक्सपेरिमेंटल फिल्में होती हैं, जिनमें अक्सर कहानी मुख्य नहीं होती।
हाँ, जो बड़ी अजीब सी लगती है कभी कभी,
हल्की हंसी। हाँ, तो उनमें कैरल का ढांचा हमें ये देखने में मदद करता है कि फिल्म माध्यम के अपने गुणों जैसे रंग, रूप, गति, लय पर कैसे ध्यान दे रही है और वो हमारी देखने और समझने की क्षमता को किस तरह चुनौती दे रही है या उसके साथ खेल रही है।
अच्छा, तो ये फ्रेमवर्क काफी व्यापक है।
हाँ, है तो।
ठीक है, तो हमने कैरल के कई अहम विचारों को छुआ, उनकी परिभाषा, कहानी कहने का तरीका, स्टाइल का महत्व, दर्शक की भूमिका, भावनाओं का तर्क, बापरे काफी कुछ है। अगर हम इन सब बातों का सार निकालना हो तो मुख्य संदेश या की टेकअवेज क्या होंगे? आप शुरू कीजिए।
मेरे लिए शायद सबसे पहला और बुनियादी संदेश है, सिनेमा चलती छवियों की कला है। ये परिभाषा तकनीक से आज़ाद है और आज के मल्टी स्क्रीन युग में बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। फोकस माध्यम पर नहीं, प्रभाव पर है।
हाँ, ये मुझे भी बहुत महत्वपूर्ण लगा। अच्छा, दूसरा मेरी तरफ से, कहानी हमें सवालों से बांधती है, एरोटिक संरचना। ये समझना कि फिल्में हमारी जिज्ञासा को कैसे पकड़ती और बनाए रखती हैं, ये बहुत ही रोशन करने वाला विचार है। और जैसा मैंने पहले कहा, ये आजकल के वेब सीरीज एडिक्शन को भी समझाता है।
हल्की हंसी। सही बात है। तीसरा, हम दर्शक सोचते समझते प्राणी हैं, संज्ञानात्मक दर्शक। फिल्में हमें सिर्फ महसूस नहीं कराती, वो हमारे दिमाग को भी काम पर लगाती हैं। हम कहानी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ते हैं, पहेलियां सुलझाते हैं। ये जानकर शायद हम अगली बार फिल्म ज्यादा ध्यान से और सम्मान से देखेंगे।
चौथा, हर फ्रेम मायने रखता है, हर कट का एक मतलब है, रूप कार्य का अनुसरण करता है। कैमरा एंगल, एडिटिंग, साउंड, हर चुनाव कहानी कहने और अनुभव को आकार देने में मदद करता है। ये हमें फिल्म बनाने की कला की इज्जत करना सिखाता है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक गंभीर शिल्प है।
पांचवा, फिल्म सिद्धांत को सरल और सुलभ होना चाहिए। कैरल ने जटिल शब्दावली के बजाय स्पष्ट तर्क और सबूतों पर जोर दिया। ये एक अच्छी बात है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फिल्मों पर गहराई से सोच सकें, बात कर सकें।
और छठा, फिल्मों का मूल्यांकन सिर्फ मुझे पसंद आया या मुझे पसंद नहीं आया से आगे बढ़कर भी हो सकता है। कैरल कुछ ठोस आधार सुझाते हैं, जैसे कहानी कितनी कोहेरेंट यानी सुसंगत है, कितनी जटिल और मौलिक है, और अपने इरादे में, जैसे हंसाना, डराना, रुलाना, कितनी कामयाब है। ये हमें बेहतर आलोचक बना सकता है।
हाँ, बिल्कुल।
चलिए अब कैरल के इन विचारों को कुछ यादगार कथनों या निचोड़ के रूप में देखते हैं। ये शायद उनके सीधे शब्द न हों, पर उनके तर्कों का सार हैं।
हाँ, ये अच्छा रहेगा। तो पहला निचोड़, जो हम पहले ही कह चुके हैं, सिनेमा को तकनीक या जैसे फिल्म या डिजिटल से नहीं, बल्कि चलती छवियों की कला के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। इसका मतलब साफ है, असली चीज नियंत्रित गति है, माध्यम नहीं।
दूसरा, लोकप्रिय कहानी एरोटिक है। यह दर्शक के मन में सवाल उठाकर और फिर जवाब देने की प्रक्रिया के इर्द गिर्द कथानक को व्यवस्थित करके काम करती है। यह इस बात पर रोशनी डालता है कि हम कहानी से बौद्धिक रूप से क्यों जुड़ते हैं। हमारा दिमाग जवाब ढूंढने में लगा रहता है।
तीसरा विचार, एक फिल्म एक दृश्य को मानदंड केंद्रित करके एक विशिष्ट भावना का संकेत देती है, ताकि एक विशेष भावनात्मक प्रतिक्रिया सामान्य मानव दर्शक के लिए सबसे समझने योग्य और उपयुक्त हो। ये भावनाओं को तर्कसंगत बनाता है, उन्हें हवा हवाई नहीं रहने देता और उन्हें सीधे फिल्म निर्माता की कला से जोड़ता है। भावनाएं जादू नहीं बल्कि सोचा समझा डिजाइन है।
और चौथा, सिनेमा में शैली सिर्फ सजावट नहीं है, यह एक कार्य करती है। यह दर्शक का ध्यान निर्देशित करने और कथा की उनकी समझ को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किया गया एक उपकरण है। यह हमें फिल्मों को और ज्यादा बारीकी से विश्लेषणात्मक ढंग से देखने के लिए प्रेरित करता है। हर चीज का एक कारण है।
हाँ, ये चारों विचार उनके काम का अच्छा सार प्रस्तुत करते हैं।
तो अब सबसे जरूरी सवाल, इन सब दिलचस्प अकादमिक लगने वाली बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या इस्तेमाल हो सकता है? एक आम दर्शक के लिए इसका क्या मतलब है?
देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि ये हमारे फिल्म देखने के तरीके को बदल सकता है। हम सिर्फ पैसे व भोक्ता होने के बजाय एक्टिव पार्टिसिपेंट बन सकते हैं।
एक्टिव पार्टिसिपेंट कैसे?
हम सिर्फ कहानी में नहीं खोएंगे बल्कि ये भी देख पाएंगे कि कहानी हमें कैसे सुनाई जा रही है। कोई सीन सस्पेंसफुल क्यों लग रहा है? ओ, शायद तेज कटिंग, क्लोजअप्स और उस डरावने बैकग्राउंड संगीत की वजह से।
अच्छा, तो इससे मजा कम नहीं होगा?
मुझे नहीं लगता, बल्कि शायद कला की सराहना बढ़ेगी। हम समझ पाएंगे कि निर्देशक ने कितनी मेहनत और सोच विचार से वो प्रभाव पैदा किया है।
और जो लोग फिल्में बनाते हैं या कहानियां लिखते हैं, उनके लिए तो ये बहुत काम का होगा।
हाँ, उनके लिए तो ये सीधे सीधे खाका है। कहानी को कैसे बांधे रखना है, वो एरोटिक मॉडल स्टाइल का इस्तेमाल कैसे करना है ताकि वो सिर्फ दिखावा ना लगे बल्कि कहानी को सपोर्ट करे, ये सब व्यावहारिक चीजें हैं।
और क्या फिल्मों से हटकर भी इन विचारों का कोई इस्तेमाल है?
बिल्कुल है, जैसे ध्यान निर्देशित करने का सिद्धांत। ये तो हर उस जगह काम आता है जहां आप किसी से संवाद कर रहे हैं।
जैसे?
जैसे आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या क्लास में पढ़ा रहे हैं या कोई विज्ञापन बना रहे हैं। लोगों का ध्यान कैसे खींचना है और उसे कैसे बनाए रखना है, ये समझना तो हर जगह जरूरी है ना?
हाँ, ये तो है। विजुअल लिटरेसी यानी दृश्यों को समझने की क्षमता आज के दौर में बहुत जरूरी है।
और सबसे बढ़कर ये आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। किसी भी जटिल चीज को समझने के लिए उसे टुकड़ों में बांटना, हर हिस्से का विश्लेषण करना, उसका मकसद समझना और फिर उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, ये हुनर तो सिर्फ फिल्में देखने में नहीं, जिंदगी में हर कदम पर काम आता है। किसी भी जानकारी को, किसी भी तर्क को इसी तरह परखा जा सकता है।
बिल्कुल सही कहा। तो इस पूरी गहरी बातचीत के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए सबसे यादगार या शायद सबसे चौंकाने वाली बात क्या रही इस चर्चा में?
मेरे लिए शायद सबसे चौंकाने वाली तो नहीं कहूंगा, पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि कैरल ने भावनाओं जैसी नरम चीज को कितना तर्कसंगत और संरचनात्मक बना दिया। हम अक्सर सोचते हैं कि कला और भावनाएं तर्क से परे हैं, लेकिन कैरल दिखाते हैं कि कैसे भावनाओं को भी बहुत सोच समझकर डिजाइन के जरिए पैदा किया जा सकता है। ये कारीगरी के प्रति सम्मान बढ़ाता है।
हाँ, मेरे लिए भी यही बात सबसे अनोखी थी। पहले लगता था फिल्में बस जादू की तरह असर करती हैं, अब लगता है कि ये एक बहुत ही सोची समझी बुद्धिमान कारीगरी है। इससे शायद थोड़ा रहस्य कम हुआ हो, पर शिल्प के लिए इज्जत बहुत बढ़ गई है।
और आपके लिए?
मेरे लिए दो बातें खास रहीं। एक तो रही सिनेमा चलती छवि की कला है वाली परिभाषा, आज के टिकटॉक और यूट्यूब के जमाने में ये कितनी सही लगती है। और दूसरा, रूप कार्य का अनुसरण करता है वाला विचार। अब जब मैं कोई फिल्म देखूंगी तो शायद हर शॉट के पीछे निर्देशक की सोच को पकड़ने की कोशिश करूंगी। ये वाकई देखने का नजरिया बदल सकता है।
हाँ, ये एक अच्छा लेंस है फिल्मों को देखने का।
और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। कैरल कहते हैं कि फिल्में बुद्धिमान दर्शक के लिए बुद्धिमानी से डिजाइन की गई कलाकृतियां हैं। जरा सोचिए, फिल्मों को सिर्फ टाइम पास या मनोरंजन मानने की बजाय उन्हें डिजाइन की गई कलाकृतियों के रूप में देखने से आपका अनुभव कैसे बदलता है, इस पर जरूर सोचिएगा।
बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।